समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान -1 प्रयोजन और प्रतिवेदन।
भारत अनादिकाल से समस्त संसार का मार्गदर्शन करता रहा है। विश्व मानव की सर्वतोमुखी प्रगति में उसने सदा से अजस्र अनुदान दिया है।
ज्ञान और विज्ञान का उदय अवतरण इस भारत भूमि पर सर्वप्रथम हुआ तो, पर वह सीमित क्षेत्र में अवरुद्ध नहीं रहा। प्रभातकालीन सूर्योदय का श्रेय तो मिला, पर वे किरणें समूची जगति को प्रकाशवान बनाने के लिए निस्सृत होती रहीं। समस्त मानव जाति ने भारतीय अनुदानों का अनवरत लाभ उठाया। यही है इस देश की गौरव गरिमा का प्रधान आधार। भारत भूमि को स्वर्गादपि गरियसी कहा गया है। यहाँ किसी समय 33 करोड़ की जनसंख्या थी। उज्ज्वल चरित्र और आदर्श कर्तृत्व की दृष्टि से उन्हें देवता की पदवी दी जाती रही।
इस देश में 33 कोटि देवता रहते हैं, यह विश्वविख्यात था।
भारत को जगतगुरु कहा जाता था, क्योंकि उसने विश्व सुधा के कोने कोने में ज्ञान विज्ञान का प्रकाश फैलाया। उसे चक्रवर्ती शासक माना जाता था, क्योंकि उसने समाज व्यवस्था और शासन सत्ता की स्थापना का मार्ग सुझाया और अंगड़ मानव को व्यवस्था बनाकर रहने का क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया। उसे स्वर्ग संपदाओं का स्वामी कहा जाता था, क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन आदि के सुझाव और साधन सर्वत्र यहीं से पहुंचाए गए। जो अपने आप में भरा पूरा हो और पृथ्वी भर को संपन्न बनाने के लिए अनुदान बखेर रहा हो, उसे कुबेर का देश, स्वर्ण संपदाओं का स्वामी तो कहा ही जाना चाहिए। भारत की गौरवमयी गरिमा प्रागैतिहासिक काल से गगनचुंबी बनी और 1 सहस्राब्दी से पूर्व तक अक्षुण बनी रही। दुर्दिन ने हमारा आंतरिक स्तर गिराया, तदनुसार परिस्थितियां भी गिरती बिगड़ती चली गईं।
पतन का क्रम इतना आगे गया कि हमें विदेशियों द्वारा लंबे समय तक पद दलित रहना पड़ा, रोमांचकारी शोषण और उत्पीड़न का शिकार बनना पड़ा। जो किसी समय हर क्षेत्र में दानी था, उसे पग पग पर पराश्री, परावलंबी और परमुखापेक्षी होकर रहना पड़ा। उत्थान और पतन की अपनी अपनी विधाएं एवं परंपराएं हैं। मनुष्य जब तक सद्गुण संपन्न, संयमी, पराक्रमी, शालीन और उदात्त रहता है, तब तक उसकी प्रगति होती है और उन उपलब्ध विभूतियों का लाभ दूसरे भी उठाते हैं।
किंतु जब मनुष्य व्यक्तिवादी, स्वार्थ संकीर्णता से ग्रसित हो तो उसे अनेकानेक दुर्भावनाओं का, दुर्गुणों का और दुष्प्रवृत्तियों का शिकार होना पड़ता है।
इस स्थिति में वह स्वयं दीन दरिद्र बनता है और अपनी दुर्गंध से दूर दूर तक के वातावरण को दुर्गंधित कर देता है।
हमारे व्यक्तित्व घटिया बने तो दुर्बल भी हुए। जहां दुर्बलता होती है वहां आक्रांता को मनमानी करने का अवसर मिल जाता है।
पिछले 1000 वर्षों तक हम इस कुचक्र में पड़े अपने अवसान का दुर्दंड भोगते रहे। संसार बहुत आगे निकल गया और हम हर क्षेत्र में पिछड़ते गए। नव जागरण की इस प्रभात वेला में भारत को अपनी खोई हुई चेतना को पुनः प्राप्त करना है और पुरातन गौरव गरिमा के प्राप्त करने के लिए प्रचंड प्रयत्न करना है। युग का संदेश है कि हम अपने खोए हुए वर्चस्व को पुनः प्राप्त करें और न केवल अपने को गौरवशाली बनाएं वरन विश्व कल्याण के उस उत्तरदायित्व को भी वहन करें जिसे इस देश ने लाखों वर्ष तक अपने कंधों पर उठाए रखा था। स्पष्ट है कि भौतिक समृद्धियों का चिरस्थायी आधार सद्गुणों पर आधारित विभूतियों पर टिका हुआ है।
लोभ मोह की, वासना तृष्णा की, पेट प्रजनन की क्षुद्रता तक सीमित रहने वाले मनुष्यता की गरिमा को गंवाते हुए क्रमशः नरपशु, नरकीटक और नरपिशाच की स्थिति तक गिरते चले जाते हैं।
जिन्हें समूह निष्ठा का ध्यान है, जो व्यक्तित्व और चरित्र को उत्कृष्टता से अलंकृत करते हैं, जिन्हें उदारता, कर्तव्यपरायणता, आत्मीयता एवं सेवा साधना में आनंद मिलता है, वे मनुष्य से महामानव, ऋषि, देवता और भगवान के स्तर तक ऊंचे उठते हैं और अपने अनुदानों से समस्त संसार को उपकृत करते हैं। इस सनातन सत्य और अविच्छिन्न तथ्य को हमें जानना, मानना एवं हृदयंगम करना पड़ेगा।
प्रगति का यही रास्ता है। हम आत्मिक दृष्टि से ऊंचे उठेंगे तो भौतिक प्रगति सहज ही उपलब्ध होती चली जाएगी।
प्रकाश की ओर चलने से छाया अनायास ही पीछे चलती है। हम जिस दयनीय स्थिति में पड़े हैं उससे उबरने का सदुद्देश्यपूर्ण हर संभव प्रयत्न करें। साथ ही यह ध्यान रखें कि हमारे चारों ओर समस्त संसार में भयंकर दावानल जल रहा है।
उसे बुझाने के प्रयत्न को भी आत्मोत्कर्ष का एक अंग मानकर ही चलें, अन्यथा इस अग्निकांड की चपेट में आकर हम अपना अस्तित्व ही खो बैठेंगे।
ऐसी दशा में अपने छोटे दायरे में छोटी प्रगति की बात भी कहाँ बन पड़ेगी।
वर्तमान परिस्थितियों में आत्मोद्धार के पश्चात विश्वोद्धार की नीति नहीं अपनाई जा सकती।
अब दोनों प्रयास एक साथ करने पड़ेंगे। स्वास्थ्य अच्छा बनाने के उपरांत घर के बीमारों की देखभाल करने की बात सोचना वांछनीय है। समय की पुकार अपना, अपने देश का और समस्त विश्व परिवार का हित साधन साथ साथ कर सकने वाली योजना को हाथ में लेने की है। हमें वही करना चाहिए।
प्रस्तुत पुस्तक का लेखन संपादन इस उद्देश्य से किया गया है कि प्रत्येक भारतीय अपनी ऐतिहासिक गौरव गरिमा को समझे और उन महान परंपराओं को जाने जिन्होंने हमारे पूर्वजों को देवोपम सम्मान का अधिकारी बनाया था। भारतीय कभी नर पशु नहीं रहे।
वे क्षुद्र स्वार्थों के लिए न तो कभी जिए हैं और न मरे खपे हैं। जन्मभूमि में ही उनको मानवीय कर्तव्यों को अपनाने की और उसके लिए बढ़ चढ़कर त्याग बलिदान करने की शिक्षा दिलाई जाती है। वे पेट और परिवार को नहीं, आदर्शों की रक्षा करने एवं समस्त संसार को पीड़ा एवं पतन को निरस्त करने के लिए अपने चिंतन और कर्तृत्व को निरंतर नियोजित रखते थे।
इस देवोपम रीति नीति को अपनाकर वे आत्मिक विभूतियों से और भौतिक समृद्धियों से भरे पूरे बन सके, साथ ही अपना तथा समस्त संसार का भला कर सके। यही है हमारी सांस्कृतिक पुण्य परंपरा, पूर्वजों की विरासत और गौरव गरिमा की आधारशिला, जिससे हमें पूरे भावावेश एवं प्रचंड पुरुषार्थ के साथ अपनी नवोदित सत्ता की प्राण प्रतिष्ठा करनी है।
प्रगति के सर्वतोमुखी प्रयास करने के लिए समय ने, संस्कृति की आत्मा ने हमें पुकारा है।
इस उद्बोधन को हमें स्वीकार करना ही चाहिए।
इस संदर्भ में हमें अपने अतीत से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए और पूर्वजों के महान पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। इस दिशा में आवश्यक प्रकाश एवं प्रोत्साहन प्रदान करने में वह इतिहास उपयोगी सिद्ध होगा, जिसे संक्षेप में इस पुस्तक के पृष्ठों पर अंकित किया गया है। इन्हीं प्रयत्नों में युग निर्माण योजना निरत है।
अपने देशवासी पूर्वजों की महान परंपराओं को अपनाएं और अपना उत्कर्ष करते हुए लोकमंगल की भूमिका का समुचित निर्वाह करें, इसी उद्देश्य के इर्द गिर्द उसकी समस्त गतिविधियां घूमती हैं। देश में सांस्कृतिक वर्चस्व की पुनः प्रतिष्ठापना हो और उसका प्रकाश संसार के कोने कोने में फैले, तभी सच्ची और चिरस्थायी सुख शांति की नींव रखी जा सकेगी। इस दिशा में भारतीय लोकमानस को प्रोत्साहन एवं प्रकाश देने की दृष्टि से यह पुस्तक लिखी गई है। साथ ही युग निर्माण योजना के अंतर्गत संसार भर को मानवीय संस्कृति का संदेश सुनाने को वैसी ही गतिविधियों को अग्रसर करने वाला शंखनाद किया गया है, जैसा कि हमारे युग पुरुषों द्वारा अनवरत गति से किया जाता रहा था। आशा है कि विज्ञ पाठक इस पुस्तक को इसी दृष्टि से देखेंगे और प्रस्तुत प्रकाश से समुचित प्रेरणा ग्रहण करेंगे। विषय सूची 1. अपने गौरव में अतीत की झांकी 2. तीर्थ यात्रा हमारी परंपरा 3.
पूर्वजों की पुण्य परंपराएं हम फिर अपनाएं 4.
बृहत्तर भारत और उसकी सीमाएं 5.
विश्व के कोने कोने में फैली हुई भारतीय सभ्यता 6. विश्व निर्माण की ओर से आंखें न मूंदले 7.
अमेरिका और भारतीय संस्कृति 8. यूरोप का आर्यावर्त जर्मनी 9. अफ्रीका महाद्वीप में भारतीय संस्कृति 10. मॉरिशस छोटा भारत 11. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भारतीय 12.
भारतीय प्रतिभाओं का समस्त विश्व में आवागमन 13.
बौद्ध धर्म का उदय एक क्रांतिकारी अवतरण 14. संप्रदाय नहीं दर्शन, शिष्य नहीं उत्तराधिकारी 15. मध्य एशिया का खोतान क्षेत्र बृहत्तर भारत का एक अंग 16.
चीन भारतीय संस्कृति के चरणों में 17.
रूस तक भारतीय संस्कृति का विकास विस्तार 18. सूर्यवंशी जापान की बौद्ध निष्ठा 19.
कोरिया और मंगोलिया में आलोक 20.
साइबेरिया के घोर शीत प्रदेश में 21. रामायण प्रेमी इंडोनेशिया 22. हिंद चीन क्षेत्र को भारत के अनुदान 23. भारतीय धर्मानुयायी कंबोडिया 24. सुवर्ण द्वीप समूह जिसे भारतीयों ने बसाया बढ़ाया 25. सुवर्ण द्वीप में हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का प्रसार 26. भारतीय धर्मानुयायी जावा 27. सुमात्रा श्रीविजय देश 28. बोनियो में भारतीयता 29. आज का अनाम प्राचीन काल का चंपा हिंदू राज्य 30.
बाली में धर्म विस्तार 31.
सियाम थाईलैंड एकमात्र बौद्ध राष्ट्र 32.
मलेशिया और सिंगापुर 33.
पश्चिमी एशिया में भारतीय वर्चस्व 34. विद्वेश के दुष्परिणाम 35. कैलाश मानसरोवर का शिवतीर्थ तिब्बत 36. नेपाल संसार का एकमात्र स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र 37. भूटान प्रांत जो अब भारत का संरक्षित प्रदेश भर है 38.
सिक्किम अभी भी भारत से जुड़ा है 39.
बर्मा भी हमसे विलग हो गया 40.
लंका और भारत की एकता
41. पाकिस्तान हमारी सांस्कृतिक दुर्बलता का प्रतिफल 42. बांग्लादेश बांग्लादेश 43. प्रवासी भारतीयों की वर्तमान स्थिति 44.
विदेशों में भारतीयता प्रेमी संगठन 45.
प्रवासी भारतीयों संबंधी कुछ उपलब्ध जानकारियां 46. भारतीय तत्व ज्ञान को विश्वव्यापी बनाया जाए। अपने गौरव में अतीत की एक झांकी। आदर्श सहित उद्देश्य को यदि जीवन लक्ष्य बनाया जाए तो मनुष्य की अंतःचेतना अत्यंत बलिष्ठ होती जाती है और उस सामर्थ्य के कारण जीवनोपयोगी सभी आवश्यक सुविधा साधन तो सहज में जुटते ही रहते हैं, साथ ही वे परिस्थितियां भी प्रस्तुत होती रहती हैं जिनके कारण आत्मसंतोष मिलता रहे, आत्मा गौरव उपलब्ध होता है रहे।
आत्मबल ही इस संसार में सबसे बड़ा बल और वैभव है। इसे प्राप्त करने के उपरांत न कोई दैह शेष रहता है और न अभाव, न दारिद्र्य का कोई कारण शेष बचता है।
अपने गुण कर्म स्वभाव की उत्कृष्टता यदि संपादित कर ली जाए तो भौतिक दृष्टि से तृप्तिदायक सुख और आनंददायक शांति की प्रचुर मात्रा सदैव सामने खड़ी रहती है।
ऐसे व्यक्ति स्वयं श्रेय प्राप्त करते हैं और अपनी पीठ पर बिठाकर अनेकों को पार उतारते हैं।
उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए अनेकों अल्प सामर्थ्यवान उन्नति के उच्च शिखर पर चढ़ने का प्रकाश एवं साहस प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल में संपत्ति का अर्थ होता था दैवी संपत्ति, गुण, कर्म, स्वभाव के व्यक्तिगत जीवन की उत्कृष्टता, व्यक्तित्व की प्रखरता। जिसके पास यह पूंजी थी उसे संपत्तिवान कहा जाता था। उस समय प्रगति का अर्थ था अपनेपन की परिधि को अधिकाधिक व्यापक विस्तृत बनाना। आत्मीयता को शरीर और परिवार तक सीमित न रखकर उसे मनुष्य मात्र तक, प्राणी मात्र तक विस्तृत करना।
दूसरों के डैख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी रहना।
अपनी चेतना तथा कर्तव्य से सुविस्तृत क्षेत्र को लाभान्वित करना। देश, धर्म, समाज और संस्कृति की, मानवता की परिपुष्टि के लिए बड़े चढ़े साहस और पुरुषार्थ का परिचय देना। उन दिनों हर व्यक्ति सुसंपन्न बनना चाहता था, पर वह संपन्नता चांदी के टुकड़ों, विलासिता के उपकरणों एवं ठाट बाट के अहंकारी प्रदर्शनों तक सीमित न थी। सामान्य लोगों की तुलना में कौन कितने बड़े आदर्शवादी कीर्तिमान स्थापित कर सका, इसी कसौटी पर व्यक्ति का वर्चस्व परखा जाता था। जो महामानव की, भूसुर की भूमिका संपन्न करते थे उन्हें ही संपत्तिशाली माना जाता था।
लिप्सु लोलुप, कृपण और कृतघ्न, समकीन, स्वार्थी जहां तहां उस जमाने में भी थे और उनके पास दूसरों की तुलना में वैभव भी अधिक रहता था, उससे शौक मौज का लाभ भी उन्हें मिलता था, पर आत्म संतोष और लोकमानस से सर्वथा वंचित वे अभागे निकृष्ट नरकीटों की तरह ही मौत के दिन पूरे करते थे।
उन्हें विज्ञ समाज में कंगाल कहकर उपहासास्पद एवं घृणास्पद माना जाता था, भले ही अमीरी का ठाट बाट उनके पास कितना ही बड़ा चढ़ा क्यों न हो।
प्राचीन भारत का इतिहास इस देश में जन्मे नर रत्नों का इतिहास है।
भारत भूमि ने अन्न, वृक्ष, खनिज जैसी प्रकृति संपदाएं उत्पन्न करके भौतिक संपदाओं के ही भंडार नहीं भरे, वरन देवमानवों का भी प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया।
घर घर में नर रत्नों की खान थी।
किसकी चमक कितनी प्रखर है, इसकी प्रतिस्पर्धा रहती थी। महानता की कसौटी पर किसका कितना बढ़ चढ़ा मूल्यांकन होता है, इसी महत्वाकांक्षा से हर किसी का मन उद्वेलित रहता था। शूरवीर उन दिनों तलवार चलाने वाले ही नहीं माने जाते थे, वरन उन्हें भी योद्धा घोषित किया जाता था जिन्होंने अपनी पशु प्रवृत्तियों को, तृष्णा वासना को, संकीर्ण स्वार्थपरता को पैरों तले रौंद सच्ची विजय प्राप्त की। ऐसे आत्मजयी योद्धा ही अभिनंदन और अभिवादन के पात्र समझे जाते थे। हर वर्ग में, हर क्षेत्र में ऐसे आत्मजयी योद्धा भरे पड़े थे, उनके गौरवशाली अस्तित्व भारत माता की कीर्ति ध्वजा दसों दिशाओं में उड़ाते थे। इस आधार पर सुविकसित भारत की गौरव गरिमा के सामने समस्त विश्व श्रद्धावनत मस्तक झुकाए खड़ा रहता था। उनकी विजय दंड भी विश्व के कोने कोने में गूंजती, प्रतिध्वनित होती सुनाई पड़ती थी। प्राचीन इतिहास के जितने भी पृष्ठ पलटे जाएं उनमें भारत की इसी विशेषता का उल्लेख स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ मिलता चला जाएगा। उन दिनों अभिभावक यह प्रयत्न करते थे कि गर्भावस्था में पहुंचते ही बालक महामानवों की भूमिका में अवतरित हो,
इसलिए उसकी शिक्षा उसी दिन से आरंभ हो जाती थी जिस दिन की उसने गर्भ में प्रवेश किया।
अर्जुन और सुभद्रा ने यही निश्चय किया था कि वे शुक कुक की तरह ढेरों बच्चे नहीं जनेंगे, एक उत्पन्न करेंगे और उसे सुसंस्कृत बनाने के लिए अपने आप को उस प्रकार का सांचा बनाएंगे जिससे उत्पन्न संतान महानता के सांचे में ढली हुई हो। वैसा ही हुआ भी। पति पत्नी ने परस्पर संवाद और व्यवहार विरोचित रखे, फलतः अभिमयु अभीष्ट विशेषता लेता आया। उसने उतना चक्रव्यूह आसानी से वेधन कर लिया जितना कि माता पिता से गर्भावस्था में सीखा था। मदालसा ने अपने कुछ बालकों को ब्रह्मज्ञानी बनाया।
जब तक वे बालक गर्भावस्था में रहे तब तक उसने अपना चिंतन और चरित्र वैसा ही ढाला जैसी कि उसे संतान चाहिए थी।
फलतः वे ब्रह्मवेताओं के संस्कार लेकर जन्मे। एक बालक को उसने अपनी इच्छानुसार राज्य शासन कर सकने योग्य भी ढाला और वह भी ठीक उसकी इच्छानुसार जन्मा। कुंती को देव गुणों से सुसज्जित संतान की आवश्यकता थी। उसने देव तत्वों से अपना रोम रोम ओतप्रोत किया और जिस जिस दैवी शक्ति से सुसज्जित बालक की आकांक्षा की ठीक उसी स्तर के उत्पन्न किए। सूर्यगुण संपन्न कर्ण, इंद्रपुत्र अर्जुन, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर, पवन पुत्र भीम, अश्विनी कुमार से नकुल, सहदेव उत्पन्न माने जाते हैं। यह विद्या उन दिनों घर घर में ज्ञात थी। सभी जानते थे कि अभिभावकों की आकांक्षा, निष्ठा और क्रिया जिस स्तर की होगी वैसे ही बालक जन्मेंगे,
इसलिए बच्चों का शिक्षण अभिभावक आत्मनिर्माण के रूप में आरंभ करते थे।
अंजनी को जैसा बालक अभीष्ट था वैसी उसने गर्भावस्था में तैयारी की। राम काज कीन्हे बिना मोही कहां विश्राम वाली क्षमता को लेकर हनुमान जन्मे। वे वज्रंगी विजृंगी अनायास ही नहीं थे, माता की महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही यह निर्माण संभव हुआ था। राम चाहते थे कि उनके बालक विशिष्ट महानता से ओतप्रोत हों। राजमहल का वातावरण इसके लिए अनुकूल न था तो उन्होंने सीता को ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा ताकि गर्भावस्था में माता को भ्रूण के उपयुक्त वातावरण में रहने का अवसर मिले। लवकुश जन्मे तो वे ठीक वैसे ही थे जैसा कि उनके अभिभावकों ने चाहा। शकुंतला कव ऋषि के आश्रम में पली थी।
उसके पेट में दुष्यंत का गर्भ आया तो उसने यही चाहा कि संतान अपने देश का मुख उज्ज्वल करे। फलतर सिंह शावकों से खेलने वाला भरत उसकी कोख से जन्मा और उस महाप्रतापी के पुरुषार्थ ने उसी के नाम पर इस पूरे देश का नामकरण भारतवर्ष के रूप में कर दिया। नचिकेता के उदारचेता पिता वाजिश्रवा जब समस्त धन धान्य लोकमंगल के लिए दान दे चुके तो उसने पूछा, आप लोग त्याग की परीक्षा में सफल हो चुके, फिर मोह त्याग में क्यों असफल होते हैं? मुझे खिलौना बनाकर क्यों अपने पास रखना चाहते हैं? लोकमंगल के लिए मुझे भी दान क्यों नहीं दे देते?
वाजिश्रवा ने पुत्र को अपने से बढ़कर आदर्शवादी देखा तो हर्षोल्लास से उनकी आंखें डबा आईं। उन्होंने तत्काल महातपस्वी यमाचार्य के हाथ में अपने पुत्र नचिकेता का हाथ सौंप दिया और ब्रह्मवेता बनकर इस विश्वसुधा का गौरव बढ़ाने में समर्थ हुआ। आद्य शंकराचार्य की माता अपने इकलौते पुत्र को भौतिक प्रगति में सुख समृद्धि युक्त देखना चाहती थी। पुत्रवधु और पौत्र के साथ रहने को लालायित थी। माता की मोह ममता को उसके 10 वर्षीय बालक ने चतुरतापूर्वक तोड़ मोड़कर फेंक दिया। प्रसिद्ध है कि उन्हें नदी नहाने के समय मगर ने पकड़ा तो चिल्ला करके बोले कि मुझे शंकर जी को दान करो अन्यथा मगर खा जाएगा।
माता ने अपना बालक शिवजी को दान कर दिया। वे मगर के मुंह में से छूटकर बाहर आ गए और परिव्राजक बनकर भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान करने में समर्थ हुए।
ध्रुव ने माता के मोह को निरस्त किया और तप साधना में संलग्न होकर ध्रुवतारा के रूप में ब्रह्मांड को अपनी कक्षा में घुमाने वाले केंद्र बिंदु बने। प्रहलाद छोटा बालक तो था पर उसे मोहग्रस्त पिता का वह आदेश आग्रह स्वीकार न हुआ जिसके अनुसार नीति अनीति का ध्यान न करके अधिक से अधिक वैभव उपार्जन के लिए समझाया जाता था।
समर्थ गुरु रामदास के घरवाले उन्हें विवाह के बंधन में बांधकर सामान्य प्राणियों की तरह जीने के लिए विवश कर रहे थे।
बात यहां तक पहुंच गई कि विवाह वेदी पर वधू को बिठा दिया गया। उनकी अंतरात्मा ने पुकारा कि इंद्रिय तृप्ति का पशु प्रयोजन करते हुए मानव जीवन को व्यर्थ न कर, अपनी दिव्य क्षमताओं को स्त्री बच्चों के छोटे दायरे में खर्च न कर, उसे विश्व वसुधा की संपदा बना।
अंतरात्मा की पुकार उन्होंने सुनी और विवाह वेदी पर से उठकर ताबड़तोड़ भाग खड़े हुए।
वेदी की अवज्ञा जरूर हुई पर उनका फैसला भी धर्म की परिधि से बाहर नहीं था।
मोहग्रस्तों का मोह तोड़ देना भी तो एक धर्म ही है। बड़े बूढ़े क्षोभ व्यक्त करते रहे पर समर्थ गुरु रामदास वह करने में समर्थ हुए जो 100 जन्मों तक विवाह और संतानोत्पादन करते रहने पर भी नहीं कर सकते थे। दशरथ भी कुछ ऐसा ही परामर्श राम को दे रहे थे कि वरदान कैकेयी को दिया है, तुम्हें वन जाने का आदेश नहीं दिया। झूठा पढ़ूंगा तो कैकेयी के सामने मैं पढ़ूंगा, तुम वन मत जाओ। राम ने उनका मोह तोड़ा और कहा कि संतान सुख बड़ा नहीं है, कर्तव्य बड़ा है। कृष्ण ने भी गोपियों का और अपनी दोनों माताओं का मोह तोड़कर व्रज को छोड़ा था। उन्होंने सभी स्वजनों और प्रेमियों को समझाया कि जो उच्च कर्तव्यों में बाधा पहुंचाए वह प्रेम नहीं, मोह है। मोह के बंधन तोड़ने में अधर्म नहीं है।
यह कहकर कृष्ण व्रज का परित्याग करके कर्तव्य की पुकार पूरी करने के लिए, अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने की तैयारी करने के लिए अन्यत्र चले गए। तब वे किशोरावस्था में पदार्पण ही कर रहे थे।
गुरु गोविंद सिंह के बालकों के सामने जीवित रहने के लिए इस्लाम स्वीकार करने की शर्त थी। बच्चों ने हंसते हंसते जीवित दीवार में चुने जाने की दुरूह पीड़ा सहकर अपने प्राण गंवाए।
वे जानते थे कि जीवन मरण का कोई महत्व नहीं,
सर्वोपरि महत्ता आदर्शों की रक्षा करना है। कुंती अज्ञातवास की अवधि में अपने बालकों को लेकर एक ब्राह्मण परिवार में छिपी हुई दिन काट रही थी। उस गांव में हर घर से एक मनुष्य राक्षस के द्वारा खाए जाने का क्रम चल रहा था।
उस दिन आश्रयदाता ब्राह्मण के इकलौते पुत्र की बारी आ गई।
पांचों बच्चे मचल पड़े, हम में से एक राक्षस के सामने क्यों न चला जाए और ब्राह्मण बालक को क्यों न बचा लिया जाए। उनके प्रबल आग्रह ने कुंती को बात मानने के लिए बाध्य कर दिया।
अब इस सौभाग्य का लाभ कौन उठाए,
इस बात पर सब बच्चे आपस में लड़ने लगे।
अंततः गोली निकालकर भाग्य का फैसला कराया गया। निर्णय भीम के पक्ष में हुआ।
वह राक्षस के सामने हंसता उछलता चला गया और स्वयं शिकार बनने के स्थान पर उल्टा उसे ही मार कर आया।
बच्चे उन दिनों जानते थे कि मरना भी यदि सदुद्देश्य के लिए संभव हो सके तो वह 1000 बार जीने की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर है।
विवाह आदर्शों की स्थापना के लिए 2 आत्माओं के मिलन के रूप में होते थे, कामुकता के घृणित प्रयोजन की पूर्ति के लिए नहीं।
दोनों मिलकर परिवार को एक छोटे आदर्श राष्ट्र के रूप में विकसित करते थे। परिवारों की संरचना एक सुव्यवस्थित समाज संरचना की प्रयोगशाला के रूप में होती थी। इस पर पति पत्नी न्यूनतम संतानोत्पादन करते थे, बच्चों को सुसंस्कृत बनाने पर ध्यान देते थे, विवाहित होने पर भी संतानोत्पादन थोड़े ही करते थे। जो करते थे उनके सामने विशेष लक्ष्य रहता था।
वासनात्मक उन्माद उन्हें इसके लिए प्रेरित नहीं करता था। यह आदर्श न केवल ऋषियों वरन सामान्य स्तर के लोगों में भी प्रचलित था।
गृहस्थ जीवन में भी जनसाधारण के बीच आदर्शों की घोर प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता ठनी रहती थी।
कौन किससे आगे निकलता है, यह चुनौती अपने अपने क्षेत्र में हर कोई अपने साथियों को देता रहता था। राम और भरत दोनों के सामने ऐसा ही धर्म संकट उत्पन्न था। दोनों ही चाहते थे कि त्याग और आदर्श के क्षेत्र में उनकी हेठी न होने पाए। राज्य हमें नहीं दूसरे को मिले, इस प्रतिद्वंदिता में कोई हारा नहीं।
फैसला यह हुआ कि राम की तरह ही भरत भी 14 वर्ष तक तपस्वी जीवन जिएंगे।
राज सिंहासन पर राम की खड़ाओं स्थापित की जाएंगी।
विश्वामित्र उन दिनों नवयुग का सूत्रपात कर रहे थे, उन्हें साधनों की आवश्यकता थी। उनके शिष्य हरिश्चंद्र ने पूर्ण निष्प्रियता का परिचय दिया, अपनी सारी संपदा ऋषि के हवाले कर दी। कमी पड़ी तो अपने को, स्त्री बच्चों को बेचकर प्रस्तुत आवश्यकता की पूर्ति करने का आदर्श प्रस्तुत किया। सुदामा के गुरुकुल की अभावग्रस्त स्थिति दूर करने के लिए कृष्ण ने अपनी द्वारिका की अधिकांश संपत्ति का अधिकांश भाग ऋषि सुदामा को सौंप दिया था। राजा कर्ण को विपुल वेतन मिलता था, वे अपनी दैनिक आय में से अपने निर्वाह की न्यूनतम राशि लेकर शेष उसी दिन सत्प्रयोजनों के लिए दान कर देते थे।
मरते समय दांतों में लगा सोना तक दान कर जाने वाले कर्ण की परंपरा उन दिनों सभी सुसंपन्न व्यक्तियों में प्रचलित थी। कभी किसी के पास धन जमा हो भी गया तो विशिष्ट अवसर सामने आते ही उसने भामाशाह की तरह अपनी सारी संपदा प्रताप जैसे प्रयोजनों के लिए सौंपते हुए अपना भार हल्का कर लिया। राजा जनक व्यक्तिगत निर्वाह के लिए कृषि करते थे और स्वयं हल चलाते थे।
राज्यकोष प्रजा की अमानत था और उसी के लिए खर्च होता था। ऐसा ही आचरण अन्य राजा भी करते थे। रानी अहिल्याबाई के राज्यकोष में से अधिकांश धर्म प्रयोजनों के लिए खर्च होता रहा। राजनीतिक विकृतियों का निवारण करने के लिए प्रस्तुत अश्वमेध योजनाएं और सामाजिक अव्यवस्थाओं का निराकरण करने के लिए प्रस्तुत वाजपेयी यज्ञ अभियानों में न केवल राजाओं के राज्यकोष खाली होते थे, वरन संपन्न लोगों की संपन्नता भी झाड़ बुहार कर साफ कर दी जाती थी। उन दिनों लोकमंगल के प्रयोजनों में निरत साधु संस्था के सदस्य, साधु और ब्राह्मण अपने आप में एक पवित्र संस्था होते थे। परमार्थ जीवन जीते थे, उन्हें जनता मुक्तहस्त से दान देती थी। कब किस प्रयोजन लिए कितना धन खर्चा किया जाए, यह निर्णय उन ऋषिकल्प महामानवों को ही सौंप दिया जाता था और ब्रह्मभोज तथा दान दक्षिणा के रूप में वे देव पुरुष पर्याप्त साधन सामग्री प्राप्त कर लेते थे। फलस्वरूप लोकमंगल की विभिन्न प्रवृत्तियां सहज ही फलती फूलती रहती थी। प्रत्येक हर्ष एवं पर्व के अवसर पर दान पुण्य की आवश्यकता हर गृहस्थ में समझी जाती थी। गृहस्थों की दान प्रवृत्ति विभिन्न कर्मकांडों एवं धर्मायोजनों के माध्यम से उठती उभरती रहती थी। फलतः समाज में इन प्रवृत्तियों को ऊंचा उठाने वाले क्रियाकलाप इतने बड़े चढ़े रहते थे कि न केवल अपना देश वरन समस्त विश्व उस दान पुण्य की जनभावना से समुचित लाभ उठाता रहता था।
मंदिर उन दिनों देव प्रतिमा पूजन भर तक की रूढ़ियां पूरी नहीं करते थे।
उन दिनों के समस्त देवालय अपने क्षेत्र में आदर्शवादी प्रेरणाओं का आलोक फैलाने वाले सफल केंद्र बिंदु बनकर अनेकानेक रचनात्मक धर्म प्रवृत्तियों का संचालन करते थे।
कोई मंदिर देवालय अभावग्रस्त नहीं रहता था और उपलब्ध साधनों को मंदिरों का संचालन करता पुरोहित पूरी तरह जन कल्याण में ही प्रयुक्त करता था।
गृहस्थ अपना घर परिवार तो चलाते ही थे, पर साधु ब्राह्मणों द्वारा संचालित धर्म प्रयोजनों में कहीं कुछ भी कमी न पड़ने पाए इसका भी पूरा पूरा ध्यान रखते थे। व्यक्तिगत वैभव वृद्धि के स्थान पर धर्म प्रयोजनों के लिए कुछ अधिक रखने की प्रवृत्ति हर साधन संपन्न मनुष्य के मन में निरंतर उफनती रहती थी। इन परिस्थितियों जैसा इस देश का प्रत्येक नागरिक आदर्शवादिता की प्रतिमूर्ति था। हर भारतीय का चरित्र एक महामानव का चरित्र था।
उनमें से कभी कभी कोई दृष्टांत, उदाहरण चर्चा का विषय भी बनते रहे हैं, पर जब सभी लोग उस स्तर के थे तो चर्चा भी आखिर कहां तक की जाए।
अभिभावकों के प्रति संतान के कर्तव्यों के उदाहरण ढूंढी तो श्रवण कुमार द्वारा अंधे माँ बाप को कंधे पर कांवर में बिठाकर तीर्थयात्रा कराना, भीष्म पितामह का अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन अविवाहित रहना, ययाति पुत्र का अपना यौवन वृद्ध पिता को देना, सत्यवान का तपस्वी पिता की सेवा व्यवस्था लकड़हारा बनकर करते रहना, यह सिद्ध करते हैं कि उन दिनों के सामान्य से सामान्य संतान को कर्तव्यप्रायणता के स्तर तक पहुंचा हुआ पाया जाएगा। पतिव्रत धर्म निर्वाह करने वाली सावित्री, दमयंती, सीता, गांधारी सर्वत्र मिलेंगी। स्वयं कष्ट में जीवन स्वीकार करके पतियों को कर्तव्य पथ पर धकेलने वाली वीर नारियां घर घर में मौजूद थी। वे उन्हें नीचे नहीं गिराती थी, वरन ऊंचा उठाती थी। पुत्रों को गुरुकुल के लिए, पतियों को धर्मयुद्ध के लिए भेजते हुए वे मोहग्रस्तता के आंसू नहीं बहाती थी, वरन गर्व गौरव के साथ आरती उतारते हुए विदा करती थी।
हाड़ा की रानी की तरह उन्हें अपना सिर काटकर पति को मोहग्रस्तता से उबारने में आपत्ति नहीं होती थी।
पन्नादाई को अपना बच्चा प्यारा तो था, पर सौंपे हुए कर्तव्य से अधिक नहीं।
उसने स्वामी का बच्चा बचाने के लिए अपने लाड़ले की आहुति चढ़ाते हुए आघात तो सहा, पर मन यह सोचकर हल्का कर लिया कि उसने नारी की गरिमा की एक उपयुक्त स्थापना करने में गौरवमयी परंपरा सही रूप में निभाई। चित्तौड़ की रानियों ने अपना शरीर नहीं, नारी का साहस जीवित रखना उचित समझा और वे जीवित जलने जैसे कष्ट को सहने के लिए प्रसन्नतापूर्वक तैयार हो गईं। विवाह हर लड़की के लिए न तो आवश्यक है और न अनिवार्य। यदि किसी में लोक कल्याण के लिए कुछ कर बुझने का साहस हो तो उसे अविवाहित रहकर अपनी शक्तियों का पूर्ण समर्पण लोकमंगल के लिए करना चाहिए। इसके अगणित उदाहरण प्राचीन इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हैं।
मनु पुत्री इला ने ब्रह्मवादिनी का आदर्श निभाया और वे ब्रह्मवेताओं में अग्रणी थी। ऋग्वेद में घोसा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, जुहू, अदिति, सरमा, रोमशा, उर्वशी, लोपामुद्रा, शाश्वती, सूर्या आदि ब्रह्मवादिनी महिलाओं का वर्णन मिलता है। तैतरीय ब्राह्मण में सीता और सावित्री नामक दो ब्रह्मवादिनियों का वर्णन है।
सिद्धा, सुलभा, शिवा, श्रीवृत्ति, स्वधा, वपुना आदि कितनी ही कन्याएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने गृहस्थ में प्रवेश करने की अपेक्षा पुरुष ऋषियों की भांति लोकमंगल के लिए अपना जीवन समर्पित किया और यह सिद्ध किया कि नारी के लिए विवाहित होना कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है,
वह पुरुष की तरह ही इच्छा और रुचि का विषय रहा है। भारत की समुन्नत परिस्थिति और परिष्कृत मन स्थिति का श्रेय यहाँ के ऋषियों को दिया जाता है।
यह उचित भी है।
उज्ज्वल चरित्र, उत्कृष्ट चिंतन और साहसिक पुरुषार्थ का त्रिविध समन्वय जिन व्यक्तियों में होगा वे स्वयं तो ऊंचे उठेंगे ही, अपने साथ साथ लोकमानस को और समस्त वातावरण को भी ऊंचा उठाएंगे।
ऋषियों की क्रिया प्रक्रिया यही थी।
वे सार्वजनिक क्षेत्र के हर पक्ष को देखते और संभालते थे। द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, परशुराम जैसे ऋषि धनुर्वेद में पारंगत थे। ये शास्त्र निर्माण और संचालन की शोध एवं शिक्षा के कार्य में संलग्न थे ताकि असुरता से सफलतापूर्वक जूझा जा सके। चरक, सुश्रुत, बागभट्ट, अश्विनी कुमार, धन्वंतरी जैसे ऋषि स्वास्थ्य संबंधित और चिकित्सा के रहस्यों को ढूंढने और उन्हें सर्वसाधारण के लिए प्रस्तुत करने में संलग्न थे। नागार्जुन, हारित और सुषेण जैसे ऋषि रसायन विद्या के विकास और विस्तार में जुटे हुए थे। विश्वकर्मा, शतोधन जैसे ऋषियों ने शिल्प एवं वास्तुकला के संबंध में जो खोजा उससे विश्व सौंदर्य में असाधारण वृद्धि हुई। नारद, उपमन्यु, उद्दालक जैसे ऋषि स्वर शास्त्र के सामगान में पारंगत थे।
उन्होंने गान वाद्य की कला के मर्मों से जनमानस को आंदोलित किया और उसके रसास्वादन का विधि विधान समझाया।
उत्कच, विद्रुद, महानंद जैसे ऋषि कृषि और पशुपालन का विज्ञान विकसित करने में जुटे थे। व्यास परंपरा के ऋषियों ने शास्त्र रचना की मुहिम संभाली। सूत परंपरा के ऋषि प्रवचनकर्ता थे। चाणक्य, याज्ञवल्क्य, कंव, धौम्य जैसे ऋषियों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षा संस्थान चलाए जाते थे। छोटे बड़े गुरुकुल तो प्रायः सभी ऋषि चलाते थे। कपिल, कनाद, गौतम, पतंजलि जैसे दार्शनिकों द्वारा विश्व मानव की बौद्धिक क्षुधा बुझाने के लिए बहुमूल्य प्रतिपादन किए जाते रहे। वशिष्ठ, शुक्राचार्य, विदुर आदि ऋषि राजतंत्र का मार्गदर्शन करने में निरत थे। च्यवन, दधीची आदि ऋषियों ने तप साधना करके मानवीय अंतःस्थल में छिपी रहस्यमय शक्तियों के उपयोग का पथ प्रशस्त किया था।
लोकमंगल के अनेकानेक प्रयोजनों में यह ऋषि वर्ग के लोग निरंतर संलग्न रहते थे।
नीतिपूर्ण प्रतिबंधों को धर्म मर्यादा का नाम जब भी दिया गया तब तुरंत उसके विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया गया। बड़े भाई की आज्ञा छोटे भाई को माननी चाहिए, इस मोटे अनुशासन के नियम के साथ जब अनीति को जोड़ा गया तो विभीषण ने अपने बड़े भाई का परामर्श मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। हिरण्यक्षिपु पिता तो था, पर वह जो कहता था अनीति मूलक था। प्रहलाद उसके विरुद्ध तनकर खड़ा हो गया और अंत तक विरोध पर डटा रहा। भरत ने माता का कहना न मानकर राज लेने के आदेश को स्पष्ट अस्वीकार कर दिया। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की अवज्ञा करके वामन को दान देने का साहस दिखाया।
एक ओर जहां धर्म अनुशासन पालन के लिए भारतीय संस्कृति में निर्देश है, वहां यह छूट भी पूरी तरह दी गई है कि यदि स्वजन अथवा बड़े कहे जाने वाले लोग भी अनीति के लिए बाध्य करें तो स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया जाए। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को परामर्श प्रयोजनों के लिए निछावर करते रहने में हर व्यक्ति ने यहां अपने को सौभाग्यशाली माना है।
दधीची ने अपनी अस्थियां निकालकर देवताओं को दे दी। शुनिशेप नरमेद की प्रथम आहुति बनने के लिए आगे आया।
मोरध्वज को पुत्र दान में संकोच नहीं हुआ।
शिवी ने अपना मांस निकाल कर दिया। हरिश्चंद्र ने अपनी सारी संपदा विश्वामित्र को सौंपी। संयमराय ने अपने स्वामी पृथ्वीराज के युद्ध क्षेत्र में घायल होने पर प्राण बचाने के लिए अपने अंग काट काट कर गिद्धों को डाले थे और उस समय की स्वामी सेवक के बीच भरी रहने वाले वफादारी का उदाहरण प्रस्तुत किया था।
तब हर घर में भामाशाह थे। संचित पूंजी को परमार्थ के लिए सुरक्षित अमानत भर माना जाता था। समय आने पर देने में किसी को कोई संकोच नहीं होता था।
आदर्शवादी उदाहरणों का उल्लेख करते रहना असंभव है, क्योंकि प्राचीन भारत में प्रायः हर व्यक्ति आदर्शवादी था। संकीर्ण स्वार्थपरता से भरा व्यक्तिवाद उन दिनों भर्त्सनीय आसुरी प्रकृति में गिना जाता था।
ऐसे निकृष्टता के उदाहरण कदाचित ही कहीं दीख पड़ते थे।
भारत की सर्वतोमुखी प्रगति और गौरव गरिमा के अंतराल में वस्तुतः यही महानता का भावनात्मक इतिहास छिपा पड़ा है। इसी के फलस्वरूप यह देश भौतिक संपदाओं से संपन्न रहा, हर्षोल्लास के प्रचुर साधनों से भंडार भरे रहे, शारीरिक बलिष्ठता और मानसिक प्रबुद्धता का स्तर बहुत ऊंचा रहा। मनुष्य के बीच सघन आत्मीयता बिखरी पड़ती थी। मिलजुलकर कमाने खाने की प्रवृत्ति ने हर क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति का पथ प्रशस्त किया था। संयमशीलता, सज्जनता, सादगी और शालीनता की विभूतियां हर व्यक्ति को उपलब्ध थी। गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता में प्रत्येक एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में निरत था। उन परिस्थितियों में सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य था। यहाँ के निवासी देवता कहे जाते थे और यह देश स्वर्ग माना जाता था।
इस वैभव को भारतवासियों ने अपनी भौगोलिक सीमाओं में सीमित नहीं रखा, वरन विश्व के कोने कोने में जाकर बिखेरा।
इससे हमारे महान पूर्वज धन्य हुए और उनके महान कर्तृत्व से समस्त भूमंडल कृतकृत्य हुआ। यही है हमारे भूतकालीन इतिहास की एक झलक।
इसी मार्ग का अनुगमन करने के लिए युग की आवश्यकता पुकार पुकार कर हमारा आवाहन कर रही है।
तीर्थयात्रा हमारी पुण्य परंपरा। यह सही है कि जहां फूल खिलता है वहां मधुमक्खियां, तितलियां और भौरे खींचते चले आते हैं।
संसार के कोने कोने से ज्ञान की क्षुधा और संपदा की आवश्यकता पूरी करने के लिए यहां विभिन्न वर्गों के लोग आते थे और अपनी मनोकामनाएं पूरी करके लौटते थे। पर यह भी सही है कि मलयज पवन अपने वैभव को बिखेरने दरवाजे दरवाजे जाता है। सूर्य की किरणें वीरान पहाड़ों को भी प्रकाशित करती हैं, बादल दुर्गम महावनों को भी शीतल करते हैं। संत परिव्राजक बनकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्वयं पहुंचते हैं। अशक्त रोगी तो अस्पताल पहुंच नहीं पाता, उसके घर तक डॉक्टर को ही पहुंचना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में तीर्थयात्रा को अत्यधिक महत्व दिया गया है और उसका बढ़ चढ़कर पुण्य महात्म्य गाया गया है।
यह तीर्थयात्रा आज की लकीर पीटने वाली विडंबना से सर्वथा भिन्न थी।
आज तो अमुक स्थान पर बने अमुक मंदिर की प्रतिमा के दर्शन करने, अमुक नदी सरोवर में नहा लेने को तीर्थ मान लिया जाता है। रेल, मोटर आदि द्रुतगामी वाहनों में सवार होकर लोग वहां जाते हैं, प्रसाद पैसा चढ़ाते हैं, दर्शन स्नान से निवृत्त होकर उल्टे पांव लौट आते हैं और मान बैठते हैं कि पुण्य मिल गया। यह आज के अंधकार युग की अविवेकी मान्यताएं हैं, जो प्राचीन काल के क्रियाकलाप की भौणी नकल है।
वास्तविक प्रयोजन को तो लोग समझने की चेष्टा तक नहीं करते। प्राचीन काल में लोग अपना घर छोड़कर सुदूर क्षेत्र की पैदल यात्रा करते थे। संत विनोबा भावे की तरह वे गांव-गांव पड़ाव डालते थे,
वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए परामर्श एवं सहयोग प्रदान करते थे।
अमुक स्थान पर एक रास्ते से जाते और फिर दूसरे रास्ते से लौटने का कार्यक्रम रहता था, इसलिए उसे परिक्रमा, प्रदक्षिणा कहा जाता था।
इससे अधिक स्थानों से संपर्क बना सकना संभव होता था। कहां तक जाना है इसके लिए कोई तीर्थ चुन लेते थे।
तीर्थ तो भारत का हर गांव, नगर और वन था। किसी स्थान विशेष का महत्व न था। सुविधानुसार कोई भी स्थान चुन लिया और उस लक्ष्य स्थान के नाम पर तीर्थयात्रा का नामकरण कर दिया।
लोग टोलियां बनाकर प्रचार मंडली, श्रमदान मंडली, सहयोग मंडली के रूप में निकलते थे। उसमें ऐसे सभी वर्गों के लोग सम्मिलित रहते थे जो जन समस्याओं के समाधान में अपनी क्षमताओं को दे सकने योग्य हों। आवश्यक नहीं था कि वे तीर्थयात्रा मंडलियां धकापेल चलती रहें और एक दिन ही रहने की लकीर पीटें।
जहां आवश्यकता समझी जाती वहां अधिक दिन का भी पड़ाव डाला जाता था और यदि उपयोगिता समझी गई तो दल के कुछ सदस्य वहां अधिक दिनों के लिए अथवा सदा के लिए ही रुक जाते थे,
शेष लोग आगे के लिए प्रयाण करते थे।
यह तीर्थयात्रा प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक धर्मकृत्य मानी जाती थी, इसलिए लोग वानप्रस्थ, संन्यास में तो निश्चित रूप से लंबी और दीर्घकालीन तीर्थयात्राएं करते थे।
जिनसे बन पड़ता था वे गृहस्थ भी कुछ दिन के लिए अवकाश लेकर इस धर्म प्रशिक्षण के लिए निकलते थे और घर वालों से कहे जाते थे कि प्रयत्न नियत अवधि में ही यात्रा पूरी करने का करेंगे, परंतु यदि मार्ग की परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं ने बाध्य किया तो अधिक समय भी लग सकता है। इसलिए जो प्रबंध उनकी अनुपस्थिति में आवश्यक व्यवस्था संभालने के लिए किया गया है उसे आगे भी जारी रखा जाए।
उन दिनों सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा थी। हर परिवार यह आवश्यक समझता था कि उसका कम से कम एक सदस्य तो तीर्थयात्रा पर रहे ही, एक वापस आ जाए तो दूसरा चला जाए, जो जाए उसकी गृहस्थी का पालन पोषण संयुक्त परिवार करे।
परिव्राजक लोकसेवक लोकमंगल की वही आवश्यकता पूरी करते थे जो पवन, सूर्य, बादल आदि घर घर पहुंचकर जीवन दान देने के लिए अनवरत क्रम से करते रहते हैं।
साधु और ब्राह्मणों के लिए तो परिव्रज्य अनिवार्य ही थी।
गृहस्थ भी उस पुण्य प्रयोजन में सहयोग करने से पीछे नहीं रहते थे।
प्राचीन भारत की इस पुण्य परंपरा ने ऐसे सुयोग्यतम भावनाशील लोकसेवी विपुल संख्या में निकाले थे जो अपने क्षेत्र तक अपनी प्रतिभा को अवरुद्ध न करके उसका व्यापक क्षेत्रों में उपयोग करके अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का संपादन करते थे। पुण्य किसी के मत्थे चांदी तांबे के टुकड़े फेंक देने से नहीं हो सकता। इससे तो लोगों में भिक्षा से हीन वृत्ति और अकर्मण्यता उत्पन्न होती है।
असली दान तो पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए उन्हें संभव सहयोग प्रदान करना ही हो सकता है।
इसके लिए व्यक्तिगत संपर्क, प्रोत्साहन एवं क्रियात्मक सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। चिरस्थायी सत्परिणाम उत्पन्न करने वाली पुण्य प्रक्रिया यही है। आपत्तिकाल में किन्हीं संकटग्रस्त लोगों को अन्न वस्त्र निवास आदि देने की भी आवश्यकता पड़ती है, पर स्थिर समाधान तो उन कारणों को हटाने से ही संभव है जिन्होंने व्यक्ति को विपन्न परिस्थितियों में धकेला। इस उद्देश्य की पूर्ति जनसंपर्क और जनसहयोग में अपने आप को घुलाए बिना अन्य किसी प्रकार हो ही नहीं सकती।
सुदूर देशों की समस्याओं को समाधान देने के लिए उन क्षेत्रों में जाना आवश्यक था, इसलिए जिनमें परमार्थ भावना की प्रखरता होती थी वे तीर्थयात्रा के लिए साहस एकत्रित करते थे और उनके साधन जुटाते थे।
जनता इन तीर्थयात्राओं की उपयोगिता समझती थी, इसलिए इनकी शरीर यात्रा का समुचित प्रबंध करने के लिए आवश्यक व्यवस्था जुटने वाले साधन खड़े करना परमार्थ प्रयोजनों में ही गिनती थी। धर्मशालाएं विशुद्ध रूप से धर्म प्रचारकों के निवास के लिए ही बनती थी। भोग भंडार का प्रबंध इसलिए रहता था कि तीर्थयात्रा वाले परिव्राजकों को सुविधापूर्वक भोजन मिल जाए। अन्य क्षेत्र भी इसीलिए खोले जाते थे।
प्याऊ इन पथिकों के लिए ही थी।
अतिथि सत्कार का जो प्रचलन था उसमें भी यही भाव था कि साधु संस्था के सदस्य संत ब्राह्मण तीर्थयात्री जिधर से निकले उधर उन्हें शरीर यात्रा संबंधी किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। सद्गृहस्थ इस आवश्यकता को जुटाना अपना पुण्य कर्तव्य समझें, यही था अतिथि सत्कार। माता पिता और गुरु के समान ही अतिथि को भी माना गया था। अतिथि का स्पष्ट अर्थ धर्म प्रचारक है। उन दिनों तीर्थयात्रियों को शरीर निर्माण की सुविधाएं हर जगह सरलतापूर्वक मिल जाती थी, इसलिए वे अपना कार्य अपरिग्रही रहकर भी सुविधा के साथ संपन्न करते रहते थे।
सुयोग्य लोकसेवी अन्य क्षेत्रों में रहकर ही सेवा कार्य करें, यह तो बहुत घाटे का काम था। हर जगह मोती उगते नहीं। समुद्र के अमुक क्षेत्र से संग्रह करके उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भेजना पड़ता है। हाथी हर जगह कहाँ होते हैं, जहाँ उनके झुंड हैं वहीं से पकड़ पकड़ कर उन्हें जगह जगह ले जाया जाता है। संत और लोकसेवक हर गांव, हर नगर में तो होते नहीं, वे कहीं कहीं और कभी कभी ही पैदा होते हैं। उन देव विभूतियों की सार्थकता इसी में है कि वे परिभ्रमण करके सूर्य, चंद्रमा और पवन वरुण की तरह जगह जगह पहुँचे और वहाँ के निवासियों की आवश्यकता पूरी करें।
यदि हर लोकसेवक अपनी जन्मभूमि में ही कार्य करने की सोचे तो फिर बहुत थोड़े स्थानों में ही प्रकाश टिमटिमाता दिखाई देगा और अन्य सभी जगह अंधकार छाया रहेगा। सम वितरण, सम विभाजन के साम्य सिद्धांत की मांग यही है कि एक क्षेत्र में उत्पन्न हुई विशेष संपत्ति को वहीं तक सीमित न रहने दिया जाए वरन उससे अधिकाधिक लोगों को लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए।
धरती सभी की है, यदि अमीर लोग ही उस संपदा को दबाकर बैठ जाएं तो धरती माता के अन्य पुत्रों को माता के पैरपान से वंचित रहना पड़ेगा। क्षेत्रीय सीमाओं तक संकुचित रहने की बात धर्म और विवेक में से किसी भी कसौटी पर सही नहीं उतरती। लड़की जिस घर में पैदा होती है वह सयानी होने पर उसी में नहीं बनी रहती वरन दूसरा घर बसाती है। इसी प्रकार उदारचेता लोकसेवी भी अपने ही स्थान पर सदा सर्वदा के लिए जमे रहने की बात नहीं सोचते, उन्हें वे स्थान ढूंढने पड़ते हैं जहाँ अंधकार अधिक है और वहाँ जाकर वे अधिक महत्वपूर्ण सेवा कर सकते हैं। तीर्थयात्रा इन्हीं समस्त आदर्शों को अपने भीतर भरे बैठी है। उस महान परंपरा में विश्वमानव के सुख सौभाग्य के उज्ज्वल भविष्य की समस्त संभावनाएं छिपी पड़ी हैं।
इसलिए उसे अधिकाधिक महत्वपूर्ण फलदायक धर्मकृत्य माना गया है।
प्राचीन भारत में प्रबुद्ध और समर्थ व्यक्ति अपनी मंडलियां लेकर इस महान प्रयोजन के लिए लंबी यात्राओं का कार्यक्रम बनाते थे और निश्चय करते थे कि वे सुविधाजनक स्थानों में रहने की लुप्त दुर्बलता को मन में आश्रय न देकर वहां निवास करेंगे जहां अधिक पिछड़ापन है और जहां उनकी प्रतिभा का अधिक अच्छा उपयोग संभव है।
इस तीर्थयात्रा प्रवृत्ति को प्राचीन भारत में पूरी तरह हृदयंगम किया गया था और उसे पूरी तरह कार्यान्वित किया गया था। यही कारण है कि यातायात की घोर दुर्गमता रहने पर भी प्रकाश वितरणकर्ता वहां तक जीवन का संदेश लेकर पहुंचे और अपना सर्वस्व होकर भागीरथ प्रयत्नों द्वारा अज्ञान, अभाव और अशक्ति का उन्मूलन किया तथा सर्वतोमुखी सुख समृद्धि की गंगा बहाई।
यही कारण था कि भारत में कहीं भी पतन और पिछड़ापन दृष्टिगोचर नहीं होता था।
क्या सुविधा भरे और क्या असुविधा के सभी क्षेत्रों में उदीयमान सौभाग्य सूर्य का आलोक परिलक्षित होता था। इस पुण्य भूमि को स्वर्गोपम देवभूमि बनाने में इन तीर्थयात्रियों की प्रमुख भूमिका रहती रही है। लोकसेवी परिव्राजक संतों ने अपनी गतिविधियां भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर अवरुद्ध नहीं की वरन समस्त विश्व को अपना घर और समस्त मानव जाति को अपना परिवार माना। अस्तु, वे पिछड़ेपन से जूझने के लिए दुर्गमता को चुनौती देते हुए धरती के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रसन्नतापूर्वक गए और यदि लौटना आवश्यक न लगा तो वहीं डेरा डालकर बस गए। जहां जन्मा जाए वहीं रहा जाए, यदि यही आग्रह होता तो हिमालय की बर्फ गलकर नदियों के रूप में शुष्क क्षेत्रों को सींचते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए समुद्र तक दौड़े जाने का कष्ट न उठाती। फिर समुद्र का जल बादल बनकर अन्यत्र बरसने को सहमत न होता और सृष्टि का सारा क्रम संतुलन ही बिगड़ जाता। महामानवों का चिंतन भूमि या परिधि से ऊंचा उठा हुआ होता है। उनकी आत्मीयता किसी भी खंड से नहीं बंधती, वरन वे अधिक विपन्नता से अधिक कड़ा संघर्ष करने का लक्ष्य सामने रखकर अपना कार्यक्षेत्र निर्धारित करते हैं।
अस्तु, इस देश के महामानवों की दृष्टि इस बात पर जमी रही कि किस भूखंड में किस स्तर का पिछड़ापन अधिक है और वहां पहुंचकर किस क्रिया पद्धति को अपनाकर किन समस्याओं को कैसे हल किया जाए।
यही थी उस जमाने की धर्म विस्तार पद्धति।
इसमें केवल पूजा पाठ शास्त्र वाचन ही धर्म सेवा नहीं माना जाता था, वरन स्थानीय समस्याओं में से प्रत्येक के समाधान को धर्म सेवा में सम्मिलित कर लिया जाता था।
अधिक जटिल समस्या को सर्वप्रथम समाधान के लिए हाथ में लिया जाता था। इस परिष्कृत दृष्टिकोण को लेकर भारतीय तीर्थयात्री, धर्म प्रचारक, लोकसेवी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों, प्रदेशों में पहुंचे और वहां की शासन प्रक्रिया को दिशा प्रेरणा देकर सुव्यवस्थित किया। स्पष्ट है कि सुशासन के बिना प्रजा को स्थिरता एवं प्रगति का लाभ मिल ही नहीं सकता। भारतीय धर्म प्रचारकों ने सुदूर देशों की कबायली सामंतशाही को हटाकर वहां प्रजा द्वारा प्रजा के लिए शासन का लक्ष्य लेकर सुशासनों की स्थापना की। इस संस्थापना नेतृत्व के लिए उन्हें कृतज्ञतापूर्वक चक्रवर्ती कहा गया। जहां संपत्ति के अभाव में दरिद्रता का साम्राज्य था, वहां कृषि, पशुपालन, शिल्प, उद्योग आदि की सुव्यवस्था बनाकर संपन्नता के साधन जुटाए, इसलिए उन्हें वरदानी भूदेव कहा गया। अशिक्षा और अविद्या से छुटकारा दिलाकर वैयक्तिक और सामाजिक समर्थता का पथ प्रशस्त किया, इसलिए उन्हें जगतगुरु का सम्मान मिला। यह सर्वतोमुखी सेवा साधना थी। भारतीय परिव्राजकों से ऐसा ही बहुमुखी लाभ समस्त संसार की जनता ने उठाया। उन दिनों धर्म शब्द का प्रयोजन मानव जाति की सर्वतोमुखी प्रगति के लिए की किया जाता था। पूजा पाठ अथवा प्रथा प्रचलनों की छोटी सी सीमाओं में धर्म का विशाल कलेवर सीमाबद्ध हो भी नहीं सकता था। धर्मशास्त्रों, धर्मकृत्यों एवं प्रचलनों की अमुक पद्धति थी तो पर वह रूढ़ी मात्र नहीं थी। उसके आधार पर मानव जाति के समस्त पक्षों को समुन्नत एवं परिष्कृत किया जाता था। उसी प्रयोजन के लिए भारतीय दर्शन एवं धर्म का तत्वज्ञान एवं ब्रह्मविद्या की साधना एवं उपासना का विशालकाय ढांचा खड़ा किया गया था।
प्राचीन काल में यातायात आज की तरह सरल न था।
तब रेल, मोटर आदि का नाम न था।
न तो बढ़िया सड़कें थीं और न नदियों पर सुदृढ़ पुलों की व्यवस्था थी।
उबड़ खाबड़ कच्ची सड़कें, जगह जगह नदी नालों के अवरोध, सुदूर क्षेत्र में फैले सघन वन, जल और वनस्पति से रहित मरुस्थल, सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि हिंसक जंतुओं के आक्रमण, डाकुओं का बाहुल्य, हिमाच्छादित गिरिश्रृंग, ग्रीष्म में तपता भूतल, कीचड़ दलदल की सड़ी जलवायु, भोजन, जल और निवास संबंधी घोर असुविधा, भाषा भिन्नता के कारण दूर देश के लोगों से विचार विनिमय की कठिनाई, स्थानीय प्रथा परंपरा से अपरिचित होने के कारण विग्रह की संभावना, अजनबी लोग, अपरिचित क्षेत्र जैसी असंख्य कठिनाइयों के कारण उन दिनों लंबी यात्राएं करनी स्पष्टतः एक दुस्साहस था। उस ओर कदम बढ़ाने वाले हथेली पर जान रखकर ही उस प्रकार का निर्णय करते थे। ऐसी साहसिक यात्राएं कोई छोटे स्वार्थों को लेकर नहीं कर सकता। स्वार्थ तो तात्कालिक लाभ खोजता है, जिसमें कष्ट अधिक सुख कम हो उसे कभी कोई स्वार्थप्रायण व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा।
क्षुधार्त या आपत्तिग्रस्त तो जीवन रक्षा के लिए दूर देशों में भी जा सकता है, पर जिस देश में सुख सुविधाओं का बाहुल्य हो वहां के लोग उस आनंदी जीवन को छोड़कर प्राण संकट में डालने वाली यात्रा के लिए कटिबद्ध हों तो समझना चाहिए कि उन्हें कोई अत्यंत उच्च कोटि की अंतः प्रेरणा ने ही आंदोलित किया होगा।
सचमुच ऐसा ही होता था। लोकमंगल के लिए अधिकाधिक तप त्याग कर सकने योग्य साहसी आत्मबल, यही तो अध्यात्म साधना की एकमात्र उपलब्धि है। व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता एवं महानता जब प्रखर परिपक्व हो जाती है तो वे जन कल्याण के लिए बड़े चढ़े दुस्साहसी पुरुषार्थ करने के लिए मिचलते हैं। इसी छटपटाहट से भारतीय महामानवों का अंतःकरण उद्वेलित रहता था और वही तड़प विश्व कल्याण के निमित्त घर छोड़कर सुदूर देशों के लिए महाप्रयाण के रूप में फलित होती थी। यही थी प्राचीन काल की तीर्थयात्राएं, जिन्हें यहाँ के आस्था क्षेत्र में अत्यंत गहरा और अत्यंत सम्मानास्पद गौरव प्रदान किया गया था।
तीर्थयात्री अपनी आंखों और दूसरों की आंखों में एक प्रकार से बलिदानी शहीद स्तर के माने जाते थे।
उनका कर्तृत्व कितने लोगों का कितना उच्च स्तरीय हित साधन करेगा, इसका चित्र जब कभी किसी की आंखों के सामने उपस्थित होता था, वह उनके आगे सहज ही श्रद्धावनत खड़ा होता था। उन दिनों तीर्थयात्री पृथ्वी पर विचरण करने वाले स्वर्ग लोक के देवता ही माने जाते थे। उनका दर्शन, सान्निध्य प्राप्त कर एवं उनको सहयोग देकर सामान्य नागरिक कृतकृत्य हुए बिना नहीं रहता था।
पूर्वजों की पुण्य परंपराएं हम फिर अपनाएं।
संसार के कोने कोने में संस्कृति, समृद्धि और व्यवस्था की स्थापना करना हमारे पूर्व पुरुषों ने अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य माना था। इसके लिए वे सबसे पहले आत्मनिर्माण करते थे, अपने व्यक्तित्व को हर दृष्टि से उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त बनाते थे।
जैसा खिलौना ढालना हो उसके अनुरूप सांचा तैयार करना पड़ता है।
गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से आदर्श सिद्ध होने वाले व्यक्ति ही अपने चरित्र एवं चिंतन की छाप दूसरों पर छोड़ सकते हैं। निकृष्ट स्तर के लोग उत्कृष्टता का उपदेश करें तो उपहासास्पद विडंबना ही बन जाती है।
लोग उन उपदेशों का पालन करना तो दूर उल्टे उस उपदेशक की तरह उसके उपदेशों प्रतिपादनों को भी दिल लगी की बात समझते हैं। यह तथ्य प्राचीन काल में भली प्रकार समझ लिया गया था। अस्तु, यहाँ के नर रत्न अपने आप को तप, साधना, संयम की अग्नि में तपाकर खरा सोना बनाते थे और विद्या, प्रतिभा एवं शालीनता के लिए घोर परिश्रम करते थे। आत्मसमर्पण और लोकमंगल ये दो कार्य अलग अलग दिखते हैं, पर वस्तुतः वे दोनों परस्पर अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं।
जो आत्मसमर्पण करेगा उसकी सुविकसित महानता लोक कल्याण के लिए अग्रसर हुए बिना चैन से बैठ ही न सकेगी, और जो सच्चे मन से जन कल्याण की परमार्थ सेवा साधना करना चाहता हो उसे वह कार्य आत्मोत्कर्ष के लिए उग्र प्रयास करते हुए आरंभ करना होगा। वस्तुतः आत्मोत्कर्ष और लोक कल्याण महान जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं, जिनके सही होने पर ही अभीष्ट दिशा में गतिशीलता उत्पन्न होती है।
भारतीय जीवन का आदर्श और उसका क्रियाकलाप बार बार कसौटियों पर कसने से यही दो लक्ष्य सामने आते हैं, जिनके लिए इस देश के महान नागरिक निरंतर घोर प्रयत्न करते रहे।
उनकी महत्वाकांक्षाएं इन्हीं दो लक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमती हैं, फलतः प्रगति भी आशातीत हुई। भारत स्वयं तो समुन्नत रहा ही है, उसने अन्यत्र भी अपनी विभूतियां बिखेरी और विश्व मानव की गौरव गरिमा में चार चांद लगाए।
जब से संसार में लिखित न सही अलिखित इतिहास के सूत्र मिलते हैं, तब से ऐसे ही प्रमाण सम्मुख आते हैं जिसमें भारतीय नर रत्नों द्वारा व्यापक क्षेत्र में विविध विध सेवा साधन के सत्कृत्य प्रस्तुत किए जाते रहे।
उन दिनों वस्तुतः समस्त संसार ही भारत का अपना कार्यक्षेत्र था।
रात्रि विश्राम के लिए या अंडे देने के लिए जिस प्रकार पक्षी किसी पेड़ पर घोंसला बना लेते हैं और थकान दूर करके फिर उन्मुक्त आकाश में उड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ नई पीढ़ियों के प्रजनन प्रशिक्षण के सुविधा साधन जुटाए जाते थे।
थोड़े लोग निर्वाह साधने की व्यवस्था भी करते थे। इससे आगे जो जन बल, बुद्धि बल और धन बल बच जाता था उसे विश्व कल्याण के एकमात्र प्रयोजन के लिए ही नियोजित किया जाता था।
हमारे देश में यही परंपरा थी।
हर भावनाशील का चिंतन और कर्तृत्व इसी दिशा में गतिशील था। परिणाम प्रत्यक्ष है। भारत के देवमानव अपने देश में सतयुगी स्वर्गीय परिस्थितियां बनाए रहे, साथ ही विभूतियों के अवशेष सुदूर क्षेत्रों में बिखेरकर मानवता का अविस्मरणीय कीर्तिमान स्थापित करते रहे।
इसके प्रमाण जिस भूखंड में ढूंढे जाएं, मिल जाएंगे।
पौराणिक कथा प्रसंगों से इस तथ्य का प्रतिपादन भली प्रकार होता है। किसी भी देश की पौराणिक गाथाओं, लोककथाओं और किंवदंतियों का विश्लेषण किया जाए तो निष्कर्ष एक ही निकलेगा कि भारत भूमि के निवासी देवपुरुष उस क्षेत्र में पहुंचकर ऐसी स्थापनाएं करते रहे जिनसे दुख की दयनीयता का सुख सौभाग्य में परिणत हो सकना संभव हुआ। दैवी सहायता के रूप में भारत से प्रकाश एवं सहयोग का आशातीत अनुदान प्राप्त हुआ।
जब से भग्नावशेष, वास्तु प्रमाण आदि के प्रमाण मिलने आरंभ हुए हैं, तब से उन भारतीय गौरव गाथाओं की, प्रचलित दंतकथाओं की और भी अधिक पुष्टि होती गई है।
उसके उपरांत लिखित इतिहास का समय आता है।
भाषा और लिपि का विकास विस्तार होने के उपरांत संसार में आगे पीछे लेखन कार्य आरंभ हुआ और उसमें तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया गया।
उसमें से असंख्य लेख प्रमाण नष्ट होते गए। उनमें से जहां जहां जो प्रमाण मिले उनमें सबकी दिशा एक ही है कि सृजन का नेतृत्व करने वाले भूदेव उस भूमि को समुन्नत बनाने में अधिक परिश्रम करते रहे,
उस क्षेत्र की विकृतियों के साथ प्राणपण से जूझे।
शिलालेख, काष्ठफलक लेख, चर्मपट लेख, भोजपत्र लेख, भित्ति लेख आदि के प्राचीनतम प्रमाण जहां भी मिले हैं वहीं से भारतीय गरिमा की प्रामाणिकता ही सिद्ध हुई है। वस्तुतः सभ्यता की जन्मदात्री यह भारत भूमि ही है और यहीं से उदय हुआ सर्वतोमुखी उत्कर्ष का सूर्य समस्त विश्व में अपनी प्रकाश की किरणें फैलाता चला गया।
यह क्रम हजारों लाखों वर्षों तक चला गया।
पीछे पतन और पराभव का युग आया।
इस देश के निवासियों में स्वार्थ बुद्धि जगी, व्यक्तिवाद पनपा, निजी सुख सुविधाओं के बढ़ाने की बात सूझी, विलास लिप्सा में मन डोला, अहंकार की तृप्ति के लिए संग्रह और वर्चस्व के प्रदर्शन की दुर्बुद्धि जगी।
लोग सामूहिक स्वार्थ की उपेक्षा करके व्यक्तिगत वैभव और सुख साधन बढ़ाने की ओर मुड़े। जहां अंतः प्रवृत्तियां पतनोन्मुख होंगी वहां बहिरंग क्रियाकलाप में निकृष्टता, दुष्टता आदि की मात्रा बढ़ेगी। कुकृत्य होंगे और गुत्थियां उझेंगी,
संकटों और विग्रहों की बाढ़ आएगी।
उत्कृष्ट चिंतन की परंपराओं वाला भारत जब संकीर्ण स्वार्थपरता के गर्त में गिरा तो उसकी स्थिति पतितों जैसी दयनीय होती चली गई। प्राचीन भारत की समस्त गौरव गरिमा का केंद्र बिंदु एक ही था कि उस समय का मनुष्य संकीर्ण स्वार्थपरता की सड़ांध में मरने वाली मन स्थिति से घोर घृणा करता था। उसके सामने ऊंचा लक्ष्य रहता था और ऊंचा आदर्श। अपने निकृष्ट की पूर्ति तक सीमित रहने के लिए कोई घिनौना व्यक्ति ही तैयार होता था। पेट और प्रजनन भर के लिए जिसने मानव जीवन का बहुमूल्य अवसर गंवा दिया उसे आत्म प्रताड़ना की, विज्ञ भर्त्सना की इतनी करारी मार सहनी पड़ती थी कि लिप्सा लालसा में जो हाथ लगता था वह नगण्य ही रह जाता था। अस्तु, किसी को भी अमीर या बड़ा आदमी बनाने की हविष नहीं उठती थी। हर कोई उदार, महान, व्यापक बनकर जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आतुर रहता था। उसकी गतिविधियां, योजनाएं, आकांक्षाएं, विचारणाएं एक ही केंद्र के इर्द गिर्द घूमती रहती थी कि वह अपनी आत्मीयता एवं ममता को अधिकाधिक व्यापक कैसे बनाए, सच्चा ईश्वर भक्त, सच्चा अध्यात्मवादी, सच्चा मनुष्य कैसे कहलाए, और उस जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने लिए त्याग बलिदान की सेवा साधना में संलग्न होने के लिए कितना बढ़ चढ़कर दुस्साहस प्रस्तुत करे,
अपने क्रियाकलापों को कितना आदर्श, कितना अनुकरणीय बनाए,
पतन, पीड़ा और पिछड़ापन से जूझते हुए कितने प्रखर शौर्य साहस का परिचय दे, अपनेपन का क्षेत्र कितना व्यापक और विस्तृत बनाए। जब अंतःकरण में इसी प्रकार के उफान उठेंगे तो स्वभावतः मनुष्य को उसी राह पर चलना पड़ेगा जिससे मनुष्यता गौरवान्वित होती हो। स्पष्ट है, जहां उत्कृष्टता होगी वहां संपन्नता की प्रगति की कभी कमी नहीं रहेगी।
ऐसे व्यक्तित्व जहां भी रहते हैं वहां संपत्तियों और विभूतियों का इतना बाहुल्य रहता है कि उस समस्त क्षेत्र में वैभव बिखरा पड़ा रहे और उसे समस्त भूमंडल में बिखेरकर सुख शांति का अजस्र अनुदान दिया जा सके।
यही है वह मार्ग जिस पर हमारे पूर्वज चले थे, यही थी वह दिशा जिस पर उसके चरण अनवरत गति से बढ़े थे, यही था वह लक्ष्य जिसकी पूर्ति को उन्होंने जीवन का लक्ष्य माना था।
इसी स्तर के क्रियाकलापों में उन्हें संतोष होता था, ऐसे ही कृत्यों में संलग्न रहने में वे अपने श्रम समय को धन्य मानते थे।
फलतः उनका समग्र व्यक्तित्व देवोपम बनता था। वे स्वयं स्वर्गीय शांति का हर घड़ी आनंद लेते थे। उनके कुटुंबी स्नेह सिक्त वातावरण में परिपूर्ण वैभव जितना उल्लास अनुभव करते थे। उनका समस्त प्रभाव क्षेत्र आदर्शवादिता की सुगंध से भरा रहता था। वे चंदन वृक्ष जैसा आत्मविकास करते थे और अपने समीपवर्ती क्षेत्र में उगे हुए झाड़ झंखाड़ों को अपने सरीखे बनाने की मंगलमयी सफलता प्राप्त करते थे। यही था हमारे पूर्वजों का जीवन लक्ष्य, इसी के लिए समर्पित था उनका चिंतन और कर्तृत्व। आंतरिक महानता को बढ़ाकर उन्होंने अपने देश और धर्म को गौरवान्वित किया था और इसी उपलब्धि का यत्किंचित प्रसाद पाकर समग्र मानवता को, समस्त विश्व सुधा को समुन्नत एवं सुविकसित होने का अवसर मिला था।
हमें इन विश्व संकट के क्षणों में विशेष उत्तरदायित्वों को वहन करना है। अंधकार के निवारण की जिम्मेदारी सूर्य के कंधों पर है।
यदि वह इससे इनकार करे तो फिर सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का सर्वनाश ही समझना चाहिए। अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को प्राप्त करना, पूर्वजों की कीर्ति को धवल बनाए रहना हमारा परम पवित्र कर्तव्य है।
आज जिस पथ भ्रष्टता को अपनाकर हम पतन के गर्त में गिर पड़े हैं उससे निकलने का उत्कृष्ट प्रयास हमें करना चाहिए। प्रगति के पथ पर संसार के अनेक देश निकल गए, हम पिछड़ी स्थिति में पड़े हैं। इस आत्मग्लानी की प्रताड़ना हमें अनुभव करनी चाहिए और कृमिकीटकों की तरह पेट प्रजनन के निमित्त जिया जाने वाला निकृष्ट जीवन जीने से हमें इनकार कर देना चाहिए।
उदात्त मानवतावादी, आदर्शयुक्त, उत्कृष्ट जीवन क्रम अपनाकर और तदनुरूप दृष्टिकोण अपनाना ही हमारे लिए उचित है।
आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक आदि भावनात्मक क्षेत्रों में जो विकृतियां घुस पड़ी हैं उन्हें देखना और सुधारना अपना प्रथम कर्तव्य है।
जिन दुर्बलताओं और पथभ्रष्टताओं ने सब प्रकार दीनहीन बना दिया उनका उन्मूलन करना नवजागरण का प्रथम चरण है। व्यक्तित्व की दृष्टि से परिपक्व होने पर ही हम सच्चे अर्थों में समर्थ, बलिष्ठ और समुन्नत बन सकेंगे।
अपने देश के कोने कोने से विकृतियों और विडंबनाओं को निकाल बाहर करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। आत्मिक और भौतिक प्रगति की दिशा में अग्रसर होने के लिए हमें पूरे उत्साह एवं साहस का प्रयोग करना चाहिए। अपना पिछड़ापन दूर करके ही मानव जाति की, समस्त विश्व की महती सेवा कर सकना हमारे लिए संभव होगा।
हम व्यक्तिगत रूप से अधिकाधिक प्रगति करें और सामाजिक रूप से अधिकाधिक समुन्नत होने का प्रयास करें, पर साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उपलब्ध विभूतियों एवं संपदाओं का उपयोग संकीर्ण स्वार्थपरता के सीमा बंधनों में ही अवरुद्ध न कर दिया जाए।
पिछड़ापन जहां कहीं भी दिखाई पड़े हम दौड़ जाएं और प्रगति का प्रयास इस प्रकार वितरित करें कि किसी भी कोने में पतन का अंधकार छिपा न रहने पाए। हम सदा से वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को अपनाए रहे हैं।
विश्व मानव को अपना विस्तार क्षेत्र माना है। अपनेपन की सीमा निज के शरीर परिवार तक अवरुद्ध नहीं करनी चाहिए, वरन उन्हें इतना व्यापक बनाना चाहिए कि भारत भूमि का कोना कोना उसके प्रकाश से आलोकित हो उठे, समस्त विश्व को उसकी ऊष्मा प्राप्त करने का अवसर मिले। भूतकाल में आत्मिक दृष्टि से उच्च स्तर पर पहुंचा हुआ भारत अपनी गौरव गरिमा विनिर्मित करने में और समस्त विश्व को अपने अनुदानों से भर देने में समर्थ हुआ था। वही राजमार्ग फिर हमारा आवाहन करता है। संसार में धन, विज्ञान एवं बुद्धिबल भले ही बढ़ गया हो, तथाकथित प्रगतिशील लोग सुविधा साधनों से भले ही पट गए हों, पर उनका आत्मिक पिछड़ापन अभी भी उन्हें घोर अशांति में घिरी हुई उलझनों से जकड़े हुए है।
निर्धनों, अशिक्षितों, अस्वस्थों से भी कहीं गई गुजरी मन स्थिति में इन उन्नतिशील देशों को रहना पड़ता है। उनके सिर चढ़ी हुई दुष्प्रवृत्तियां तो उन्हें भीतर ही भीतर खोखला किए दे रही हैं।
इस स्थिति में भारत अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को विकसित करके न केवल अपना पिछड़ापन दूर कर सकता है, वरन समस्त संसार को इतना अधिक आत्मिक अनुदान दे सकता है जिसकी तुलना में उनकी अब तक की समस्त भौतिक प्रगति को तुच्छ ठहराया जा सके। सर्वग्रासी वर्तमान विश्व संकट के क्षणों में हमें अपनी गतिविधियों का निर्धारण फिर से करना चाहिए, अपनी चिंतन दिशा को फिर से परिष्कृत करना चाहिए, ताकि अपना ही नहीं समस्त संसार का सर्वतोमुखी कल्याण कर सकने में समर्थ हो सकें। भूतकाल में हमारे पूर्वज समस्त विश्व का मार्गदर्शन करने में किस प्रकार सफल हो सके, इसके लिए उन्होंने अपने में किस स्तर की क्षमता एवं आदर्शवादिता को विकसित किया, यही इस रचना का मूल उद्देश्य है। विश्व सेवा की दिशा में किए गए पूर्वजों के महान प्रयास हमारे लिए प्रेरक पथ प्रदर्शक बन सके, इसीलिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पृष्ठों को फिर से पढ़ना समझना आवश्यक है।
यह पृष्ठ इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए लिखे गए हैं।
बृहत्तर भारत और उसकी सीमाएं। प्राचीन भारत का भौगोलिक सीमांकन करना कठिन है, क्योंकि उन दिनों शासन क्षेत्र का बहुत महत्व न था। यातायात के साधन कम होने से राजा और प्रजा दोनों को ही बड़े राज्यों में कठिनाई पड़ती थी, इसलिए छोटे छोटे गणतंत्र ही शासन का विस्तार उतना रखते थे जितने में सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व आसानी से निभाया जा सके। चक्रवर्ती शासन सत्ता असीम होती थी, वह प्रांत प्रदेश की सीमा से आगे बढ़कर समस्त विश्व में राजकीय नीति एवं मर्यादाओं का नियंत्रण करती थी।
कहीं भी अनीति का प्रवेश और उच्छृंखलता का शासन सत्ता में समावेश नहीं होने देती थी।
इस प्रकार इन दिनों विश्व राज्य संघ भी था जिसे चक्रवर्ती सत्ता कहते थे। छोटे छोटे गणतंत्र भी थे जो नीति और मर्यादा की दृष्टि से तो पराधीन थे, बाकी अर्थव्यवस्था एवं शासन संचालन में स्वतंत्र थे।
राजकीय दृष्टि से देखा जाए तो आज जितना बड़ा भारत है उतने में ही सैकड़ों गणतंत्र थे जो परस्पर सहयोग के आधार पर सर्वतोमुखी प्रगति के लिए मिलजुल कर बिना किसी विद्वेष विग्रह के लोक व्यवस्था के लिए कार्य करते थे।
उन दिनों राज्यतंत्र का नहीं लोकमानस पर धर्मतंत्र का शासन था,
इसलिए देश की सीमा निर्धारित करते समय यह देखना पड़ता था कि कितना क्षेत्र किस सांस्कृतिक आलोक से प्रभावित और प्रकाशित हो रहा है।
इस दृष्टि से भारत की सीमाएं लगभग विश्व सीमा जितनी थी, क्योंकि यहाँ के तत्वदर्शी विज्ञ मनीषी अपने मस्तिष्क में किसी छोटे क्षेत्र या वर्ग का हितसाधन करने की बात न सोचकर समस्त विश्व की समृद्धि एवं प्रगति को ध्यान में रखकर अपने चिंतन एवं कर्तृत्व का निर्धारण करते थे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उन्हें किसी क्षेत्र विशेष के हितसाधन तक सीमित रहने नहीं दे सकती थी। लोक शिक्षण एवं सांस्कृतिक विस्तार की दृष्टि से भारत जगतगुरु था, शासन नियमन की दृष्टि से चक्रवर्ती। दोनों को मिलाकर सोचा जाए तो यूं कहना पड़ेगा कि राजतंत्र और धर्मतंत्र का लाभ समस्त विश्व को निरंतर पहुंचाते रहने के कारण भारत की भौगोलिक मर्यादाएं समस्त भूमंडल में सुविस्तृत थी। भारत का हृदय उत्तराखंड या आर्यावर्त कहा जा सकता है, पर उसका सुविकसित शरीर तो समस्त संसार ही रहा है।
यहाँ के निवासी उन दिनों के यातायात साधनों के अनुसार जितने क्षेत्र में पहुँच सके और अपनी सेवा साधना से वहाँ प्रगति एवं समृद्धि का बीजारोपण कर सके, उसे बिना संकोच भारत देश कहा जा सकता है।
इस सीमा में यूं आता तो समस्त संसार है, पर यदि विशिष्ट प्रभाव और विशिष्ट प्रयास को आधार मानकर सीमा निर्धारण किया जाए तो एशिया महाद्वीप का अधिकांश भूखंड भारत की भौगोलिक परंपराओं में आ जाता है। इन दिनों लंका, नेपाल, भूटान, सिक्किम, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत से अलग कट गए हैं। यह सभी इसी शताब्दी तक अपने देश के अविच्छिन्न अंग रहे हैं। 100 वर्ष पहले का यदि भूगोल देखा जाए तो यह सभी देश भारत के साथ जुड़े हुए दिखाई देंगे।
दरिद्रताग्रस्त कुटुंब में से हर एक किशोर लड़का निकल भागने और अपना अलग घर बसाने की बात सोचता है।
ठीक इसी दृष्टिकोण से उपरोक्त देशों का विलगाव हुआ है।
इससे आगे के क्षेत्र में कुछ शताब्दियों से पहले की स्थिति पर दृष्टिपात करें तो प्रतीत होगा कि भारत का विस्तार पूरे एशिया महाद्वीप में था।
बृहत्तर भारत की भौगोलिक सीमाएं इस विशाल भूखंड में समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों तक सुविकसित होती चली गई थी।
पूर्व एशिया में इंडोनेशिया, इंडो चाइना, मलेशिया के अंदर आने वाले समस्त देश और द्वीप भारत के अंग थे।
मध्य एशिया में चीन, तुर्किस्तान, रूस, जापान, कोरिया, मंगोलिया आदि पर पूरी तरह भारत का वर्चस्व था।
पश्चिम एशिया में ईरान, इराक, अरब, अफगानिस्तान जैसे वे देश जो इन दिनों इस्लाम धर्म के केंद्र हैं, उन दिनों भारत की सांस्कृतिक सीमा के अंतर्गत ही आते थे।
उन दिनों की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण किया जाए तो पूर्व एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के तीनों क्षेत्रों को मिलाकर प्रायः पूरा एशिया बृहत्तर भारत की परिधि में आता था। निरंतर का सघन संपर्क और प्रखर आदान प्रदान संबंध सूत्रों को पूरी तरह सुदृढ़ बनाए हुए था। महाभारत युद्ध में एकत्रित राजाओं और उनकी सेनाओं का वर्णन पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः समस्त एशिया के गणतंत्र उस विश्व युद्ध में सम्मिलित थे।
इसका तात्पर्य यही निकलता है कि वे सभी गणतंत्र विशाल भारत की महाभारत की सीमा में आते थे जो इस महायुद्ध में सम्मिलित हुए थे, अन्यथा किसी दूसरे की आग में कूदने की क्या आवश्यकता पड़ती।
महाभारत वस्तुतः एक गृह युद्ध ही था जिसमें बृहत्तर भारत के सभी क्षेत्र प्रदेशों को सम्मिलित होना पड़ा था। यूं यह प्रभाव क्षेत्र यूरोप, अफ्रीका आदि समीपवर्ती महाद्वीपों को भी छूता था और उसकी कुछ किरण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया खंडों तक पहुंचती थी, किंतु सघन संबंधों की कसौटी को ही प्रधानता दी जाए तो भी समस्त एशिया तो बृहत्तर भारत के अंतर्गत आता ही है। यह नहीं समझना चाहिए कि विश्व निर्माण अभियान पर निकले हुए भारतीय केवल धर्म प्रचार ही करते थे। यूं, यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य था, पर लक्ष्य इतने तक ही सीमित न था। व्यवसाय, शिक्षा, चिकित्सा, सुशासन आदि अनेक उपलब्धियों से सुदूर देशों को लाभान्वित करना हमारे पूर्वजों का प्रयोजन था। अस्तु, न केवल धर्म प्रचारक वरन सभी विशेषताओं के विशेषज्ञ अपनी अपनी क्षमता का अनुदान विश्व नागरिकों को प्रदान करने के लिए उत्साह और साहसपूर्वक अपनी यात्रा आरंभ करते थे। उन दिनों नौकायान और दुर्गम पैदल थल यात्रा ही केवल मात्र साधन इन यात्राओं के थे।
घोड़े, ऊंट, हाथी आदि भी कभी कभी काम आते थे, तो भी पशुओं द्वारा खींचे जाने वाले वाहनों के उपयुक्त सड़कें प्रायः नहीं थीं।
इन परिस्थितियों में अधिक सरल उपाय जल यात्रा का ही रह जाता था। विश्व परिवार के साथ संपर्क बनाने के लिए प्राचीन काल में भारत ने अपने जलयान अधिकाधिक सुविकसित किए थे। जल मार्गों की जानकारी, नौकायान विज्ञान को सुविकसित करने के लिए घोर प्रयत्न किया था।
भारतीय समुद्र तटों पर अच्छे बंदरगाह थे, अन्य देशों में भी उन्हें सुविधाजनक बंदरगाह बनाने पड़े।
केरल, चोल और पांड्य नामक दक्षिण भारत के राज्यों का व्यापार ग्रीस, रोम और चीन के साथ होता था।
सीरिया के इतिहास से विदित होता है कि उन लोगों ने युद्ध में भारतीय हाथी प्रयुक्त किए थे और अप्रत्याशित सफलताएं पाई थीं। मिश्र के पिरामिडों में दिवंगत राजाओं के मृत शरीर उपलब्ध हुए, वे भारत के बने कपड़ों में लिपटे पाए गए।
चंद्रगुप्त मौर्य की जलसेना बहुत विकसित और विस्तृत थी।
इसका विवरण चाणक्यकृत अर्थशास्त्र में दिया गया है।
प्रसिद्ध यात्री मेघस्थनीज ने भी अपने यात्रा विवरण में भारत की समुन्नत जल शक्ति का उल्लेख किया है।
सुदूर पूर्व के देश किसी समय भारत के लिए घर आंगन जैसे बन गए थे। बौद्ध ग्रंथ महाजातक में भारतीयों की बर्मा और अनाम यात्राओं के वर्णन हैं।
इतिहासकार पेरिप्लस के अनुसार मछलीपिटन बंदरगाह से व्यापारी जलयान पूर्वी द्वीप समूहों के लिए बहुधा आया जाया करते थे।
सुसोदिजातक के अनुसार भड़ौच गुजरात से भी जलयात्रियों के पूर्वी द्वीप समूहों के लिए जाने का वर्णन है। जावा के प्रचलित इतिहास में यह बताया गया है कि सौराष्ट्र और कलिंग के लोग वहां जाकर बसे थे और उस देश को समुन्नत बनाया था।
इतिहासज्ञ पोकरू ने अपनी पुस्तक इंडियन इन ग्रीस नामक पुस्तक में लिखा है कि ईसा से 400 वर्ष पूर्व भारतीय दार्शनिक उस देश में धर्म शिक्षा देने पहुंचे थे। मगध और सिंधु तट निवासी क्षत्रियों ने यूनान में व्यवस्थित राजसत्ता की स्थापना की थी। गार्डन चाइल्ड की न्यू लाइट ऑन दी मोस्ट एंशियंट ईस्ट के अनुसार यूनानी सभ्यता का मूल स्रोत भारतीय सभ्यता है।
सर जॉन मार्शल लियोनार्ड बुली ने जो खोजें की हैं उनसे प्राचीन यूनान में विवाह संस्कार अग्नि की परिक्रमा करते हुए होते थे तथा मुर्दे जलाए जाते थे।
प्राचीन काल में भारत का विस्तार कितना व्यापक था और उसके प्रभाव क्षेत्र में किस सीमा तक प्रायः समस्त एशिया आ चुका था, उसकी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें निम्न पुस्तकें पढ़नी चाहिए। 1. फणीन्द्रनाथ कृत इंडियन टीचर्स ऑफ चाइना। 2. राहुल सांकृत्यान कृत जापान। 3. स्टेन कृत एंशियंट खोतान। 4. B0A0 स्मिथ कृत अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 5. रामचंद्र वर्मा कृत अरब और भारत के संबंध। 6. अनेसनी कृत हिस्ट्री ऑफ जावानीज बुद्धिज्म। 7. बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। 8. वाडेल्ला कृत लामाइजम। 9. स्टेन कृत इन अ मोस्ट एशिया। 10. जनार्दन झा कृत बौद्धकालीन भारत। 11. जगमोहन वर्मा कृत फाहियान। कोलकाता की दी ग्रेटर इंडिया सोसाइटी ने अपनी प्रोग्रेस ऑफ ग्रेटर इंडियन रिसर्च योजना के अंतर्गत सन 1917 से 1942 की अवधि में अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, तिब्बत, मंगोलिया, मंचूरिया, बर्मा, सियाम, कंबोडिया, चंबा, जावा, बाली, बोनियो, सिलेवीस, सुमात्रा, मलाया, सीलोन आदि पर श्री U0N0 घोषाल के द्वारा किए गए शोध कार्य को प्रकाशित किया था। इस प्रकार का प्रामाणिक ऐतिहासिक साहित्य पढ़ने से हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत किसी भौगोलिक सीमा की परिधि में अवरुद्ध नहीं था, वरन उसका कार्यक्षेत्र समस्त विश्व था।
वे अपनी ही तरह संसार को सुखी और समुन्नत बनाने के महान